الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمين يا رب العالمين. ہم رمضان کے آخری عشرے کی بھی آخری راتوں میں داخل ہو چکے ہیں، اور ہمارا دین ہمیں یہ ترغیب دیتا ہے، ہمیں انکریج کرتا ہے کہ ہم اپنے اعمال کا جو آخر ہے اس کو بہترین کریں، یعنی ہمارا جو عمل آخری ہو، جیسے زندگی کا آخری عمل، دن کا آخری عمل. آپ دیکھیں اگر کہ رات کا بھی جو آخری پہر ہے اس کو بہت امپورٹنس دی گئی، کہ اس آخری ایک تہائی رات میں دعائیں قبول ہوتی ہیں اور اس کے اندر استغفار کرنے کی ہمیں ترغیب دی گئی ہے. اسی طرح آپ جمعے کا دن دیکھ لیں، جمعے کے دن کی جو عصر سے مغرب تک کی گھڑی ہے اس کے اندر ہمیں بتایا گیا کہ اس میں دعاؤں کی قبولیت ہوتی ہے. اسی طرح رمضان کا آخری عشرہ بتایا گیا کہ یہ بڑا ہی قیمتی عشرہ ہے، بڑا ہی فضیلت والا ہے، برکتوں والا ہے. ذوالحج کے جو پہلا عشرہ ہے اس کے بھی آخری دن جو ہیں یوم عرفہ اور یوم النحر، عید کا جو دن ہے اور عرفہ کا دن ہے، یہ بھی بہت قیمتی دن ہے، سب سے افضل دن ہے. تو آپ دیکھتے ہیں ہر ایک جگہ پر اینڈ پہ بہت ایک طرح سے اس کی زیادہ فضیلت دی گئی ہے، اس کو اور زیادہ اس کا شوق دلایا گیا ہے، اس کو قیمتی بنانے کی طرف ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہم اس لمحے کو یا اس اوقات کی خاص طور پہ حفاظت کریں. آپ سورت القدر میں بھی دیکھیں، اس رات کے شروع کی بات نہیں کی گئی، اس رات کے اینڈ کی بات کی گئی، سلام ہی حتی مطلع الفجر، کہ فجر تک یہ سلامتی ہے. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اینڈ کو صحیح کرنا ہے. اکثر لوگ اینڈ میں آ کے تھک کے بیٹھ جاتے ہیں جبکہ اعمال کا دار و مدار ہی ان کے خاتمے پہ ہے. اس لیے آپ دیکھیں نا، اپنی زندگی کے بھی کوئی لوگ ہیں جو خاتمے کی طرف جب جاتے ہیں تو بہت اس کو اچھا کر لیتے ہیں. تو خاتمے پہ بہت توجہ دینی چاہیے، نہ کہ اس وقت انسان لیزی ہو کے بیٹھ جائے، یا اس وقت انسان جو پہلے کیا ہے اس کو ہی کافی سمجھ کے اور یہ سوچے کہ اب تو کافی کر لیا ہے تو اب کیا ضرورت ہے. نہیں، خاتمہ جو ہے وہ بیسٹ ہونا چاہیے، اینڈ بیسٹ ہونا چاہیے. اور اس میں خاص طور پہ جو دعا ہمیں سکھائی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کو زیادہ مانگنے کی ضرورت ہے. اس میں بخشش کی دعا ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ سے ہم نے مانگا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو ایسے مٹا دے جیسے کہ وہ کبھی تھے ہی نہیں. اس سے آپ یہ دیکھیں کہ اگر انسان کے گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے تو وہ جہنم سے بچ جاتا ہے اور تبھی وہ جنت میں جانے کے قابل ہوتا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کوئی بتانے کے لیے فرمایا تو آپ نے ان کو کیا دعا بتائی تھی؟ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، کہ آپ دعا کیا کریں کہ اے اللہ میں نے اپنی جان پہ بہت ظلم کیا، بہت زیادہ ظلم کیا. یہ کس کو سکھائی جا رہی ہے دعا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. حالانکہ انبیاء کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو ان کا مقام ہے. اور آپ دیکھیں کہ سب سے پہلا عمل جو انسانیت کی طرف سے ہوا وہ بھی آدم علیہ السلام کی توبہ ہی ہے، اور شریعت چاہتی ہے کہ آپ کا آخری عمل بھی توبہ ہی ہو. तौबा का दरवाजा इतना वसी है कि मशरिक और मगरिब के दरमियान जितनी वुसत है इतना उस दरवाजे की दो चौखटों के दरमियान इतना फासला है, और ये दरवाजा खुला हुआ है जब तक हलक में जान ना आ जाए। ये दरवाजा अल्लाह ताला की तरफ से इंसान के लिए खुला ही रहता है। तो रमजान चाहे एंड हो रहा है, चाहे अभी तक इतनी फुर्सत नहीं मिली, तब भी एंड में भी तौबा अगर कर लेंगे अभी भी वक्त है। तो लिहाजा जो पूरी रात नहीं भी जाग सके तो इन दुआओं को जरूर मांगे, चाहे थोड़ी देर के लिए वक्त निकालें, लेकिन इस अशरे की इन रातों से गफलत ना बरते। तो जिसकी माफी हो गई असल में तो वो ही है जो के कामयाब हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह कि हम सब ने कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत कोशिश की है इस रमज़ान में अपनी इबादत को बेहतर बनाने की और अपनी नेकियों को बढ़ाने की। अगर सवाल ये है कि किस सोच के ऊपर हमें इस महीने को ख़त्म करना है, कहीं ये सोच तो नहीं है कि बहुत कर लिया, बड़ी नेकी कर ली मैंने, तो इतने कुरान ख़त्म कर लिए, इतनी तरावी पढ़ी है मैंने, इतना रातों को क़याम कर लिया, मैं तो इतनी तस्बीहात करती रही हूँ। क्या ऐसी सोच है, या कहीं ऐसा तो नहीं कि अपनी नेकियों का कोई तकब्बुर आ गया हो, कोई अपनी बड़ाई का एहसास अंदर आने लगे, कहीं अपनी नेकी का बहुत ज़ोम हो जाए। बाकी लोग तो देखो ऐसे कर रहे हैं ऐसे कर रहे हैं, और हम तो पूरी रात बस जागते रहते हैं। लोगों को तो देखो वो तो बस सो जाते हैं, और मैंने इतनी रात जाग के इतनी इतनी इबादत कर ली, और इतना इतना सदका कर लिया, और ये कर लिया और वो कर लिया। तो क्या सोच होनी चाहिए हमारी? देखिए सूरह मोमिनून में अल्लाह ताला ने फरमाया है, वल्लदीन युतूना मा अता हुआ कुलूबुहुम वजीला, और वो लोग जो देते हैं इस हाल में, जो देते हैं इस हाल में कि उनके दिल कांप रहे होते हैं। इस आयत के बारे में आयशा रजी अल्लाह तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा था कि ये कौन लोग हैं जो इतना डरते हैं, तो ये क्या गुनाह करके डर रहे होते हैं अल्लाह ताला से? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, इससे मुराद वो लोग हैं जो नेकी करते हैं और फिर भी डरते रहते हैं कि पता नहीं कबूल हो के नहीं हो। तो इससे हमें पता चलता है कि नेकी करने के बाद इंसान के अंदर क्या फीलिंग होनी चाहिए, हमारा दीन हमें क्या बताता है कि उसके बाद भी क्या इंसान ओवर कॉन्फिडेंट हो जाए, या अपनी बड़ाई में मुबतला हो जाए, या फिर डरता रहे कि पता नहीं ऐसी भी कुछ चीज हुई है कि जिससे अल्लाह राजी हो गया हो, पता नहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी नेकी कहीं जाया ना हो गई हो, पता नहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी नेकी कबूल भी हुई है कि नहीं, रिजेक्ट तो ना हो गई हो। अब वो पता है ना, जब सूरह हदीद में आता है, अलम यानी लिल्लदीन आमनु अन तख्शा कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, ईमान वालों पे अभी वो वक्त नहीं आया कि उनके दिल डर जाए अल्लाह के जिक्र से? वमा नज़ला मिनल हक, और जो हक के साथ उतरा, तो दुरुल मंसूर में आता है कि आयशा रजी अल्लाह तआला से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर से मस्जिद में आए तो सहाबा की एक जमात वहां तशरीफ रखे हुए थे और वो आपस में हंस रहे थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनको देखा इस तरह हंसते हुए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी चादर मुबारक घसीट रहे थे और चेहरा अनवर सुर्ख हो रहा था, तो फरमाया, तुम हंस रहे हो हालांकि अभी तक तुम्हारे रब की तरफ से अमान नहीं आई कि उसने तुम्हें बख्श दिया है, यानी अभी तो अभी यू डोंट नो, अभी तुम्हें क्या पता कि तुम्हारी बख्शिश भी हुई है कि नहीं। फिर यही आयत तिलावत फरमाई कि अभी तक क्या ईमान वालों के ऊपर वो वक्त नहीं आया कि उनके दिल डर जाए अल्लाह के जिक्र से? और वो तो सहाबा थे, उनके तकवा का लेवल क्या था, उनकी नेकियां कितनी थी, और हम जिनके पास कुछ भी नहीं है,
हम अगर अपनी रातें हंसी मजाक में, मेले ठेले में इधर उधर गुजार रहे हैं, हमें क्या पता कि हमारी बख्शिश भी हुई है कि नहीं। हम इतनी हवाओं में उड़ना शुरू हो जाएं, जी हमने तो इतना कर लिया, हमने तो ऐसे कर दिया। अब्दुल्ला बिन उमर इस आयत की तिलावत फरमाते थे तो आपकी आंखों से आंसू जारी हो जाते थे, इतना रोते थे कि बेहाल हो जाते थे कि अभी तक वो वक्त नहीं आया कि तुम्हारे दिल डर जाए। तुम डरते नहीं हो, तुम्हें अमान मिल गई नहीं है, तुम्हें पता है कि अल्लाह ताला ने बख्श दिया तुम्हें। फिर अगर नहीं पता तो रिलैक्स कैसे हो सकते हो, नहीं पता तो हंस कैसे सकते हो, नहीं पता तो मेलों ठेलों में कैसे खड़े हो सकते हो, नहीं पता तो तकब्बुर कैसे कर सकते हो, और अपनी बड़ाई का एहसास तुम्हारे अंदर कैसे आ सकता कि मैं तो बहुत नेक हो गई, मैंने तो चूंकि इतना कर लिया। तो नेक लोगों का ये तरीका नहीं रहा, वो तो नेकियां कर करके भी डरते थे, उनके पास तो कुछ था तो सही ना, हमारे पास अव्वल तो कुछ ज्यादा होता ही नहीं है। वो जो होता भी हो, कुछ थोड़ा बहुत कर भी लिया हो, उसके बाद तो हम ऐसे हो जाते हैं कि जैसे हम ओवर कॉन्फिडेंट के बस हमसे ज्यादा कोई नेक ही नहीं। सोचे मोहम्मद बिन मुनकदिर का जब इंतकाल का वक्त करीब था ना, तो रोने लगे, किसी ने पूछा आप क्यों रो रहे हैं, अल्लाह अकबर, फरमाया अल्लाह की किताब में एक आयत है जिसकी वजह से मैं डरता हूं, उसकी वजह से रोता हूं, और कहीं ऐसा ना हो कि मैं उस आयत के मिसदाक हूं। और वो आयत क्या थी? वबदा लहुम मिनल्लाहि मा लम यकूनु यहतसिबून। उस दिन अल्लाह की तरफ से वो कुछ जाहिर होगा जिसका वो गुमान भी नहीं कर सकते थे, उनकी सोच में ही नहीं आया था। यानी क्या मतलब? ये मैं अपने आप को कुछ और समझता फिर हूं कि बहुत अच्छा है सब कुछ, और वहां पे एकदम सीन ही कुछ और हो कि जो अल्लाह ताला की वहां पे गए तो कुछ और ही नजर आए कि ये तो वो मामला ही नहीं जैसे मैंने समझा हुआ था। मैंने तो अपने आप को कुछ समझा और यहां पे क्या है? तो अपने आप को बड़ी चीज समझना, पता नहीं अल्लाह के हाँ क्या मकाम है। इसीलिए इस आयत से बहुत डरते थे हमारे असलाफ, कहीं ऐसा ना हो हम समझे बैठे हो कुछ और, हम तो बड़े अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं और अल्लाह के हाँ कुछ और हमारा मकाम हो, या क्या वहां पे इस वक्त हमारा क्या लेवल है। अब वो मोहम्मद जाहिद कहते हैं एक जनाजे के साथ चले तो दाऊद तलाई भी साथ थे, कब्रिस्तान पहुंच के एक जगह अलहदा होके बैठ गए, तो कहते मैं भी उनके साथ बैठ गया। वो फरमाने लगे जो शख्स अल्लाह की वईद से डरता हो उसके लिए दूर का सफर यानी आखरत का जो सफर है वो आसान है। क्या मैंने कहा? जो अल्लाह की वईद से डरता हो ना उसके लिए दूर का सफर आसान है, और जिस शख्स की उम्मीदें लंबी हो उसका अमल सुस्त हो जाता है। कोई बात नहीं है, इट्स ओके, बस ठीक है, सब चलता है, तो उसके लिए अमल सुस्त हो जाता है, यानी फिर वो अमल में इतना चुस्त नहीं रहता। और जो चीज आने वाली है यानी मौत, वो बहुत करीब है। फिर फरमाया याद रख जो चीज भी तुझे रब को छोड़ के अपनी तरफ मशगूल कर ले वो मनहूस है। आप ससलम ने फरमाया दुनिया और आखरत दोनों के कुछ बेटे हैं, अगर तुमसे हो सके तो दुनिया के बेटे ना बनो, आखरत के बेटे बनो। आज अमल का दिन है, हिसाब का नहीं है, कल हिसाब का दिन होगा, अमल का नहीं होगा। यानी कल अगर अमल करना भी चाहेंगे कर नहीं सकेंगे, आज तो बहुत आराम से कर सकते हैं ना, जो चाहे बोलें, जो चाहे देखें, जो चाहे सुने, जहां चाहे चल के जाएं। कल अमल का दिन खत्म हो जाएगा, हिसाब शुरू हो जाएगा। सलमान फारसी फरमाते हैं तीन आदमी ऐसे हैं मुझे उनका ख्याल आता है तो मुझे हैरत होती है। एक वो जो दुनिया में लंबी लंबी उम्मीदें बांधे बैठा है, और मौत, मौत की उसको फिक्र नहीं है। दूसरा वो जो अल्लाह से गाफिल है मगर अल्लाह ताला उसे गाफिल नहीं। तीसरा वो जो मुंह खोल खोल के हंसता है और उसको खबर नहीं कि अल्लाह ताला उससे खुश भी है कि नहीं। ये कौन फरमा रहे हैं? सलमान अल फारिसी। और हमने इस दुनिया में दिल लगाया हुआ है लंबी लंबी उम्मीदें, जाने की कोई फिक्र नहीं। हम अल्लाह ताला से गाफिल हैं, वो हमसे गाफिल नहीं। हम यहाँ पे मुंह खोल खोल के हंसते फिरते हैं, हमें ये पता नहीं है कि अल्लाह ताला हमसे खुश भी है या नहीं। मालिक बिन दीनार फरमाते थे, एक दफा मैं बसरा के जंगल में जा रहा था तो मैंने एक शख्स को देखा। मैंने उनसे पूछा क्या हाल है, वो कहने लगे ऐसे आदमी का हाल पूछते हो जो सुबह शाम हर वक्त एक लंबे सफर पे जाने के लिए तैयार बैठा है और सफर के लिए तोशा है ही नहीं उसके पास। ना सफर का कोई सामान है, ना कोई सवारी है उसके पास, और उसको ऐसे मौला की तरफ वापस जाना है जो बड़ा आदिल है और बड़ा करीम है, और वो लोगों के दरमियान उस वक्त फैसला कर देगा। ये कह के बहुत ज्यादा रोने लगे। मैंने पूछा आप रोते क्यों हैं? कह लगे मैं तो ना दुनिया के छूटने पे रो रहा हूं, ना मौत से घबरा के रो रहा हूं, बल्कि मैं अपनी जिंदगी के उस दिन पे रो रहा हूं जो किसी नेक अमल से खाली रह गया हो। खुदा की कसम मुझे अपने सामाने सफर की कमी रुला रही है, क्योंकि सफर बहुत लंबा है और बड़ा मुश्किल है, उसमें बहुत सारी घाटियां हैं। इस सफर में बहुत सारी मुश्किलात हैं और मेरे पास सामान कोई नहीं है, और इस सफर के सारे मसाइब बर्दाश्त करने के बाद भी मुझे ये नहीं पता कि आगे जन्नत है या जहन्नुम है। अल्लाह हू अकबर, कितनी जबरदस्त बात है ना, कितनी जबरदस्त बात है। एक एक बात सोने के पानी से रिखने के काबिल है कि मैं इस बात पे नहीं रो रहा कि मुझे, मैं दुनिया से जाने लगा हूं तो मुझे इसलिए घबराहट हो रही हो कि मैं दुनिया को छोड़ रहा हूं। कुछ लोगों को तो दुनिया से इतनी मोहब्बत होती है वो कहते हैं इसको छोड़ेंगे कैसे, कहते हैं मुझे इसके पे जाने का कोई रंज नहीं है, कोई दुख नहीं है। तो ये है कि आगे आगे के लिए मेरे पास तो कुछ भी नहीं, ज़ादेरा नेक अमल से मैं खाली हूं, मैं अब सामान्य सफर की कमी पे रो रहा हूं। क्योंकि आपको और मुझे पता है ना कि सफर कितना लंबा है, आगे उसमें कितनी घाटियां हैं, गिनवाऊं आपको? मैंने उस दिन भी आपसे कहा था ना कि आप किस चीज पे गौर करें कि मुझे कौन बचाएगा, इस एक सवाल पे आपको गौर करने को मैंने कहा था। कितनी घाटियां बताएं, मौत की घाटी एक है, फिर कब्र दूसरी बड़ी सख्त घाटी, तीसरी हशर का मैदान बहुत सख्त मुश्किल वक्त, मीजान में नेकियां और बदियों का तुलना, ये कितना मुश्किल वक्त है जब आमाल नामे पकड़ाए जाएंगे तो दाएं हाथ में आएगा या बाएं पे, कितना मुश्किल है ये, कितना ज्यादा मुश्किल है ये कि उस वक्त पता नहीं है किस हाथ हाथ में दिया जाएगा। कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि उस वक्त कोई किसी को याद नहीं रखेगा। जिस वक्त अमालनामा दिया जाएगा, जिस वक्त नेकियां और बदियां तुलेंगी। और तीसरी बात, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ने ये फरमाई थी कि जिस वक्त पुल सिरात के ऊपर से लोग गुजरेंगे, उस वक्त कोई पता नहीं है कि कौन पार होता है और कौन नहीं होता। इसलिए वो वक्त है कि जिस वक्त कोई किसी को याद नहीं रखेगा। आप मुझे बताएं कि ये कोई कम छोटे मरहले हैं? कोई ये कितने सख्त मरहले हैं, ये कितने मुश्किल मरहले हैं। ये वो मरहले हैं कि जो इंसान अगर सोचने लगे, अल्लाह अकबर, कि कौन मुझे यहां पे बचाएगा, अगर इंसान सोचने लगे ना, तो एक इस मरहले को भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तब नजर आता है कि मेरे हाथ में क्या है, क्या मेरे हाथ में उतनी करंसी है कि मैं हर मरहले से आराम से गुजर जाऊं, क्या मेरे पास इतना अमल है कि मैं आराम से पार हो जाऊं, कि मैं सेटिस्फाइड होके बैठ जाऊं, या मेरा हाल इनकी तरह है कि ये फरमा रहे हैं, मैं तो इस पे उस दिन पे रो रहा हूं कि जो किसी नेक अमल से खाली रह गया हो। मैं सोच रही थी कि जिंदगी में कितने सारे दिन हैं जिस दिन कोई भी नेकी नहीं, खाली है। उनको उनके सामाने सफर की कमी रुला रही। वो हमारे पास है क्या सामान? क्योंकि सफर तो बहुत लंबा है, वो बड़ा ही मुश्किल है। इसमें घाटियां कितनी ज्यादा हैं, इसमें मुश्किलात कितनी है, और एंड में भी ये नहीं पता कि आगे क्या है। इसके बाद में से कौन है जो इन रातों में बेपरवाही से सो जाए, कि ये फिकर इस काबिल है कि हमें जगाए? ये फिकर इतनी होनी चाहिए कि इसके बाद हम ये सोचें हम कैसे गुजरेंगे। एक-एक मरहले को सोचें, फिर सोचेंगे यहां से कैसे गुजरूंगी, मेरे पास है कुछ सामान, इधर से कैसे गुजरूंगी, इधर से कैसे गुजरूंगी, इस पे क्या होगा, इस पे क्या होगा। तो आप सोचते जाएं, वो फिर अपने अमल की पोटली भी देखते जाएं, उसमें क्या क्या चीजें आपने रखी हैं, कुछ है भी कि नहीं है। तो इतना है कि जो बचा सके इन जगहों पर, अल्लाह अकबर। उसके बाद यही बात आती है ना, जो अबू जरा अर्राज़ी, वो पता है ना कितने बड़े मुहदिस गुजरे हैं, 7 लाख अहादीस उनको याद थी। 7 लाख अहादीस अलग अलग नहीं है, लेकिन उनके रावी चूंकि अलग अलग है, तो हर चेन के साथ उनको हदीस याद थी। इतनी खिदमत की उन्होंने हदीस की, और इसके लिए इतना दुनिया में घूमे, इतने सफर किए। किसी ने पूछा आपने कितना सफर किया, तो फरमाया 30,000 मील तो मैं पैदल ही चला हूं। उसने कहा बस इतना ही, हमने तो शायद 30,000 मील क्या, 3,000 मील भी कभी पैदल चल के ना देखा होगा, गाड़ी में ना गए होंगे। फरमाया मैं पैदल इतना चला हूं हदीस के लिए, तो उसने कहा बस इतना। कहते उसके बाद मैंने गिनना छोड़ दिया, और जब वफात का वक्त आया ना, तो उस वक्त वो मुहदिसीन इनके पास बैठे हुए थे, उस वक्त क्या कह रहे हैं, ए अल्लाह मुझे तेरे दीदार का बड़ा ही शौक है, मुझे तेरे दीदार का बड़ा ही शौक है, तो मुझे ये नसीब फरमा देना। तो फिर आगे से कहते हैं मुझे जवाब मिला कि कौन सा अमल लेकर आ रहे हो जिससे इतनी बड़ी ख्वाहिश कर ली। तो फरमाते हैं भी रहमती का यार, आप अल्लाह तेरी रहमत की वजह से ये ख्वाहिश करता, यानी मेरे पास कोई अमल नहीं, इतनी अहादीस की खिदमत करके भी ये जुबानी याद है उनको इतनी अहादीस, और उसके लिए इतना सफर किया और इतनी खिदमत की कि आज तक उनका नाम जिंदा है। फिर उसके बाद कहती है अल्लाह तेरी रहमत। अपने किसी नेकी का जोन नहीं, अपनी किसी अमल की ऊपर बड़ाई का इजहार नहीं, और हमारे जैसे लोग जिनके पास कुछ है नहीं वो बड़ी जल्दी गलत फहमियों में मुब्तला हो जाते हैं। उनको लगता है कि बस हमने बड़ाई कर लिया, बहुत कुछ है हमारे पास, ताकि हम देखते हैं ये सब कितना इस चीज की वजह से डरते थे, कितना इस चीज की वजह से अपने मुहासबा करते रहते थे। इसी हद आप सल्लम ने फरमाया ना, जो आंख आंसू से भर जाए, अल्लाह के खौफ से जिस आंख से आंसू निकले, अल्लाह ताला उसका जलाना आग पे हराम कर देता है। आप सल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला से डरते रहो जिसकी आंख से मक्खी या उसके सर के बराबर, कितना छोटा सा मक्खी का सर होता है, इसके बराबर भी आंसू निकल आया, आग उसको नहीं छुएगी। इसलिए दिल को इतना नरम होना चाहिए कि आंसू बहे। इंसान अल्लाह के आगे रोए कि मेरे पास कोई अमल नहीं या अल्लाह। और हम अपने असलाफ को देखते हैं, हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज का पढ़ते, रात को नमाज के लिए खड़े हुए, फिर उसके बाद जब कुरान की तिलावत करते हैं, फिर बार बार उन आयात को पढ़ते हैं, फिर रोते जाते हैं, सुबह हो जाती है। वो लोग डरते थे ना, जब तमीमदारी पढ़ते हैं एक रात एक ही आयत को बार बार ना, सूरह जासिया की है। देखिए वो अपने आप को क्या समझते थे, तो वो उस आयत को हम हसीब अल्लजी नजतराहू हम हसीब अल्लजी नजतराहू सही आती, क्या वो लोग जो बुरे काम करते हैं उन्होंने समझा हुआ है, अन्नजालहुम कल्लदीना आमन व आमिलुस सालिहात, कि हम उनको उनके बराबर कर देंगे जो इन्होंने ईमान ला के साले अमल किए। इतना रोते हैं सारी रात, सुबह हो जाती कि तुम, वो अपने आप को उनमें समझ रहे हैं। वो लोग जो बुरे काम करते हैं वो समझते हैं बस कि अल्लाह ताला उनको उनके बराबर कर देगा जो नेक अमाल करते हैं। अल्लाह अकबर। और तो और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो खुद कितना कुरान करीम की तिलावत फरमाते थे तो रोते थे ऐसी आयात के ऊपर। वो जो सबसे ज्यादा कामिल इंसान, वो भी अगर अल्लाह के खौफ से आंसू बहाते, जो जो निकम्मे हों जिनके पास कुछ का है ही नहीं, जिन्होंने पता नहीं अपनी दिन जिंदगी के कितने दिन ऐसे गुजार दिए जिनमें कोई नेकी है ही नहीं, खाली है वो, उनको कितना रोना चाहिए और उनको कितना डरना चाहिए। तो ये रातें वो हैं जिसमें सिर्फ सूखी इबादत ना करें, इतनी दफा ये पढ़ लिया अच्छा 100 की गिनती पूरी हो गई, इतना जिक्र ये कर लिया, ये जो आपका कनेक्शन बनना चाहिए ना अल्लाह ताला के साथ वो होना चाहिए इन रातों में। इसीलिए आप प्लीज मेलों ठेलों से अलग रहें, बहुत गैदरिंग्स, बहुत गपशप, बहुत हंसना बोलना, बहुत, इससे क्या वो कनेक्शन बन सकता है अल्लाह ताला के साथ? क्या वो फीलिंग ला सकते हैं कि कहीं शॉपिंग हो रही है, कहीं खाना पीना हो रहा है, कहीं खेल तमाशे हो रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है, और गपशप हो रही है और हंसी मजाक हो रहे हैं और इधर उधर की दुनिया की बातें हो रही हैं, उनमें कहीं मेरा अचानक से अल्लाह ताला के साथ कनेक्शन जुड़ जाए एक और मेरी आंखों से आंसू जारी हो जाए? ऐसा नहीं होता। इसीलिए टेक्सटिंग से परहेज करें, फेसबुक से परहेज करें, इस वक्त ऐसी चीजों से परहेज करें। खुदा के लिए ये वक्त भी अगर आप अल्लाह ताला के साथ कनेक्शन बनाने में कामयाब ना हुए तो कब होंगे? कौन सा वक्त आएगा बताएं, सारे साल तो वैसे ही हमें फुर्सत नहीं मिलती। कभी अपने मालिक को भी 1 to 1 टाइम दो, या उसमें भी कोई और शामिल हो, कभी तो उसके साथ 1 to 1 बात करो, फिर आपको उसकी लज्जत महसूस होगी, फिर आंखों से आंसू बहेंगे। ये जब तन्हाई हो, लाइट्स ऑफ कर दें, आपके आंसू भी ना कोई देखे, वो बस रब देख रहा है ना, काफी है। उसको दिखाएं, उसको सुनाएं, वो सोच लें कि मैं, जस्ट जस्ट इमेजिन, इट्स नॉट कि ये कोई, मैं आपको कोई फिक्शन बता रही, जस्ट इमेजिन, इस वक्त आंखें बंद करें, इमेजिन करें। और ये मैं डराने की बात नहीं है, इसमें कोई वो नहीं कि आप डर जाए, हाँ इससे हम जाए, हमें पता नहीं कितना डरा दिया, इट्स अ रियलिटी। आज नहीं तो कल ये होना कि मैं एक चारपाई पे हूं और मुझे उठा के लेकर जा रहे हैं, लोगों ने मुझे उठाया भी और लेकर जा रहे हैं, मुझे उनके कदमों की चाप भी सुन रही है और वो कब्र में मुझे डालने वाले हैं। अभी ये मुझे डाल के सब चले जाएंगे वापस। जस्ट ओनली इमेजिन दिस, कैसे नहीं आंसू निकलेंगे फिर, कैसे नहीं है? वो वक्त भी अगर इंसान का दिल नरम ना करे तो कौन सी चीज करेगी? वो इसी ने भी नहीं साथ होना, सोचे अपने बच्चों का, सोचे अपने हस्बैंड का, सोचे अपने वालदैन का, सोचे सबका, सोचे वो सोचे कि ये सब वापस चले जाएंगे, मैं अकेली होंगी वहां पे, मैं होंगी और मेरा रब होगा, और वो जानता होगा जो मेरे ऊपर गुजर रही, बाकी किसी को भी ये नहीं पता होगा कि मेरे साथ क्या हो रहा है। अलोन, यहां पे तो मैं कहती हूँ हमें अकेला ना छोड़ो, बिल्कुल अकेले होंगे। आप बताएंगे क्या करेंगे? खुदा के लिए इसको सोचे, खुदा के लिए बस करें, ये बस करें, ये गफलतों में से निकले। सारी दुनिया ना गफलत में डालती है, ये ना हो कि उस दिन होश आए जब ये वक्त आ जाए जिसका मैं आपको बता रही, देन इट वुड बी टू लेट। हमारी तो गफलतें खत्म नहीं हो, हमारी गफलतें खत्म नहीं। रमजान की रातें भी आ जाए तो हमारी गफलती है, क्योंकि हम शॉपिंग कर रहे हैं, हम ऑनलाइन शॉपिंग कर, हम उससे बात कर रहे हैं, उससे बात कर रहे हैं, उसके हमारी बातें ही खत्म नहीं होती। कभी अपने रब से भी तो बात करके देखो, जिसके साथ दोस्ती लगाई होगी ना, जिसने अपना दोस्त अपने रब को बनाया होगा, उसको फिर डर नहीं लगेगा, क्योंकि दोस्त साथ है ना। आज कहेंगे अल्लाह ताला मैं तुझसे दोस्ती करती हूँ, अल्लाह ताला से ताल्लुक का बनाए, मजबूत बनाए, तो फिर डर क्यों होगा? ये दोस्त साथ है, वो तो साथ नहीं छोड़ेगा, और बाकी ये सब चीजें चली जाएंगी, कोई बात नहीं। ईद की शॉपिंग कम भी हो गई तो कुछ नहीं हो जाता, कोई कमी नहीं आएगी आपके हुस्नो जमाल में, कोई कमी नहीं आएगी अगर ये रातें गुजर गई ना। हाँ, तो बहुत बड़ी कमी रह जाएगी, तो आप बस करते हैं, कुछ होश करें, ये दिन और रातें भी हमें होश में ना लाए तो पता नहीं फिर कोई और चीज ही होश में लाएगी। आज इस उम्मत का हाल ही हो चुका है कि ये सोई नहीं हुई, ये मुर्दा हो चुकी, मर गए हैं, इनको कोई चीज जगाती ही नहीं, जैसे मुर्दे को कोई नहीं जगा सकता, तो कहीं ये ना हो कि हम भी मुर्दे हो चुके हैं, यहाँ बैठ गए खत्मे कुरान यहाँ अटेंड कर लिया, वहां बैठ गए वहां अटेंड कर लिया, बस खत्मे कुरान अटेंड कर रहे हैं, ये एक फैशन बन गया। वो अल्लाह से कब कनेक्शन तुम्हारा बस एक, खुद कब बात करोगे? ठीक है, अब आप लोग जाए कयाम करें, जब आप सजदे में जाए ना अल्लाह को पुकारे, उससे बात करें, बात करें ऐसे, या गफ्फार या सत्तार, ला मैना का फोन तो है बोला, ये सजदे में करें, लंबा कयाम करें, क्योंकि लंबा कयाम करना भी इंसान के लिए आखरत के अंदर अल्लाह ताला के सामने खड़े होने में मदद करेगा। जो लंबा कयाम करेगा इंसान इस दुनिया में ना, तो आखरत में अल्लाह ताला के आगे खड़ा होना आसान हो जाएगा। तो कयाम को लंबा करें, सिर्फ कुलू अल्लाह ना पढ़े, और अल्लाह ताला से ऐसे मांगे जैसे भिखारी मांगता, भिखारी मांगता है ना जैसे, और अल्लाह ताला के नामों से उसको पुकारे, सजदे को लंबा करें, कयाम को लंबा करें, ठूंगे नहीं मारने क्या, और सारी सोचों को एक तरफ कर दें, ये सोचे कि मैं मेरे रब के आगे खड़ी हुई हूं, बस सारी दुनिया खत्म हो चुकी है, मैं हूं और मेरा रब है, बस फोकस हो जाए।